सत्यवचन। नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
यीशुआ, यीशुआ, तू ही है सच्चा प्रभु। यीशुआ, यीशुआ, तेरे चरणों में मैं झुका।
दुश्मनों के बीच
होता प्रेम की बीज, जिससे पैदा हो शांति और प्यार।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि राजा दारा के शासनकाल में कुछ अधिकारियों ने एक षड्यंत्र रचा और उसके अंतर्गत दानियल पर उन्होंने दोष लगाया कि उसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। और तब हमने देखा कि दोष के कारण दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया ताकि सिंह उसे खा जाए, परंतु परमेश्वर ने उसे सिंहों के मान में से भी बचा लिया। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दानियल नबी की पुस्तक उसके 7 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से हम सब सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी दानियल के जीवन के लिए जो आपसे प्रेम करता था और आपकी आज्ञाओं का पालन करता था। आज हम जब उसकी पुस्तक में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा, आप हम में से प्रत्येक को अपने नियंत्रण में रखें, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से अपने लोगों की रक्षा करें। आज इस समय हमारे मध्य में हो, हम सबसे बोले और बातचीत करें, प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक को निकाल लीजिए, अध्याय 7 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसका विषय है 4 पशुओं का दर्शन, मानव पुत्र का बादलों में आगमन, 4 पशुओं की व्याख्या और 4थे का वर्णन। अध्याय 7 में दानियल की पुस्तक का एक नया पक्ष आरंभ होता है। प्रथम छह अध्यायों में इतिहास का अंधकार और भविष्यवाणी की ज्योतियां, परंतु अध्याय छह में आगे के अंतिम छह अध्यायों में इतिहास के अंधकार में भविष्यवाणी की ज्योति है। प्रथम भाग में इतिहास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि दूसरे भाग में इतिहास की पृष्ठभूमि के साथ भविष्यवाणी पर बल दिया गया है। परमेश्वर ने दानियल को चार पशुओं के दर्शन कराए जो अति विचित्र हैं। ये दर्शन दानियल को अलग अलग समय में दिखाई दिए गए। अध्याय सात का दर्शन राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष का है। अध्याय आठ का दर्शन राजा बेलशस्सर के तीसरे वर्ष का है। और तब अध्याय नौ का दर्शन दानियल ने राजा दारा के प्रथम वर्ष में देखा था, और अध्याय दस में व्यक्त उसका दर्शन राजा कुसरू के तीसरे वर्ष में उसे दिखाई दिया था। अध्याय ग्यारह और बारह का दर्शन राजा दारा के प्रथम वर्ष में दानियल को दिखाई दिया था। दानियल ने इन दर्शनों को अपने पुस्तक के ऐतिहासिक भाग में नहीं लिखा, अर्थात नहीं रखा है। उसने उन सब दर्शनों को एक साथ एक दूसरे भाग में रखा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दानियल ने चार पशुओं का दर्शन देखा। बेबीलोन देश का नबूकदनेस्सर अति बुद्धिमान व्यक्ति था, जो अकस्मात ही विश्व शक्ति के स्तर पर जा पहुंचा। उसका राज्य तीन महाद्वीपों पर था, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप का कुछ भाग उसके अधीन था। उसका राज्य संसार के सब राज्यों में सबसे बड़ा था। उतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ है। अतः नबूकदनेस्सर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा कि उसका और उसके साम्राज्य का भविष्य का क्या होगा। अतः उसे स्वप्न में एक विशाल मूर्ति दिखाई दी जो अलग अलग धातुओं से बनी हुई थी। परमेश्वर ने दानियल के माध्यम से उस मूर्ति का अर्थ उसे समझाया। दानियल की पुस्तक उसके दो अध्याय में हम देखते हैं। ध्यान रखें कि नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति स्वप्न में देखी थी वह चार अलग अलग धातुओं से बनी हुई थी, और अब यहां दानियल जो दर्शन देखता है उसे भी ध्यान में रखें। यहां दानियल भी दर्शन में चार पशु देखता है, शेर, भालू, चीता और एक विचित्र भयानक पशु जो पृथ्वी में कभी नहीं देखा गया था। मेरे विचार में तो यह स्वप्न देखकर दानियल की नींद उड़ गई होगी। इससे अच्छी नींद तो उसे शेरों के मध्य में आई होगी। मेरे विचार में नबूकदनेस्सर का स्वप्न और उसका अर्थ भी दानियल के लिए विस्मयकारी था। पुराने नियम का ज्ञाता होने के कारण दानियल दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा को जानता था कि उसके वंश से एक विश्व शासक उत्पन्न होगा। वह सोच रहा होगा कि नबूकदनेस्सर के स्वप्न में चार साम्राज्य हैं जो एक के बाद एक उभरेंगे, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का यह विश्व शासक किस युग में होगा। दानियल के पुस्तक का शेष भाग इस प्रश्न का उत्तर देगा। यह संसार के इतिहास का पूर्वकालिक वर्णन है जो अग्रिम 25 वर्षों का सूक्ष्म विवरण सुनाता है। परमेश्वर दानियल को चार पशुओं का दर्शन देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है तथा उसके प्रश्नों के उत्तर भी देता है। मेरे मित्रों, चार धातुओं से बनी मूर्ति में वैभव और गरिमा थी, जो परमेश्वर जानता था कि नबूकदनेस्सर को आकर्षित करेगी। परंतु दानियल को दिए गए दर्शन में परमेश्वर उन साम्राज्यों की आंतरिक स्थिति को समझाता है। ये राज्य वास्तव में किस प्रकृति के हैं? वे वन पशुओं के समान नरभक्षी और विनाशकारी हत्यारे हैं। दानियल के दर्शन के ये चार पशु नबूकदनेस्सर के दर्शन की मूर्ति की चार धातुओं के तुल्य हैं। रोमी साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन लिखते हैं, चार साम्राज्यों का चित्रण स्पष्ट है और रोम की अजेय सेना दानियल की भविष्यवाणी में उतनी ही स्पष्ट है जितनी कि जस्टिन और दियोडोरस के इतिहास में। निम्नलिखित सारणी में दो दर्शनों और व्यक्त चार राज्यों में सामंजस्य प्रकट करती है। आप इसे लिख भी सकते हैं। पहली बात हम जो देख रहे हैं, धातुओं की मूर्ति, इसे अध्याय दो में हम पाते हैं जो सोने का सिर है। तब हम आगे देखते हैं चार पशु अध्याय सात में, और इसमें हम देखते हैं सिंह अर्थात शेर, और इसके प्रतीक भी हम देखेंगे, प्रतीक राज्य ये बेबीलोन है। अब देखते हैं धातुओं की मूर्ति में दूसरा है चांदी की भुजाएं, और चार पशुओं में दूसरा पशु है भालू अर्थात रीछ, और प्रतीक राज्य है फारसी मादी राज्य। और तब फिर हम आते हैं धातुओं की मूर्ति में तांबे का वक्ष, और तब चार पशुओं में से तीसरा पशु है चीता, और तब प्रतीक राज्य है यूनानी राज्य। और तब हम फिर आते हैं धातुओं की मूर्ति में लोहे के पैर, और फिर हम आते हैं पशुओं में भयानक पशु, प्रतीक राज्य है रोम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धातुओं की मूर्ति है सोने का सिर, चांदी की भुजाएं, तांबे का वक्ष, लोहे के पैर या लोहे और मिट्टी के पांव, और चार पशु में हम देखते हैं सिंह, भालू, चीता और तब भयानक पशु, और इसके प्रतीक राज्य हैं बेबीलोन, मादी फारसी राज्य, यूनानी राज्य और तब रोम राज्य। और इस प्रकार से हम इनको देखने पाते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक सात अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे, तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। इससे दर्शन का ऐतिहासिक काल स्पष्ट है। बेलशस्सर का प्रथम वर्ष अर्थात बेबीलोन सोने के सिर के राज्य काल का अंत समय। बेलशस्सर के राज्य में ही गोबरियाज ने नहर के रास्ते बेबीलोन में प्रवेश करके उसे जीत लिया था। यहाँ पर दर्शन अर्थात पहले दर्शन के तीन पशु और दूसरे दर्शन में एक ही चौथा पशु है। तीसरा दर्शन स्वर्ग का दृश्य है। इस प्रकार यहाँ तीन स्वप्नों का वृतांत है। उसने वह स्वप्न लिखा। इस समय दानियल बेबीलोन में लुप्त हो गया है और मेरे विचार में उसे परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अच्छा अवसर प्राप्त है। शायद इसी समय उसने दानियल की पुस्तक का प्रथम भाग भी लिखा था। दानियल की पुस्तक सात अध्याय के दो पद में लिखा है, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। लिखा है महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। यह महासागर भूमध्य सागर है। आंधी का अर्थ है अव्यवस्था, प्रचार प्रसार, जनता की राय तथा उपद्रव। सागर का अर्थ है जनसमूह, भीड़भाड़ और अन्य जाति मनुष्य। आप देख सकते हैं मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 47 पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का एक पद, यशाया 57 अध्याय उसका 20 पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 और 15 पद में लिखा है, जिन सात स्वर्गदूतों के पास वे सात कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। अतः महासागर विश्व की विभिन्न जातियों का महासमूह है। मेरे मित्रों, हवा प्रायः एक ही दिशा से चलती है। चारों ओर से उठने वाली आंधी चक्रवात कहलाती है। यह दर्शन इन उभरने वाले चार राज्यों के अस्थिर वातावरण को ही व्यक्त नहीं कर रहा है, वरन विशेष करके चौथे राज्य के अंतिम चरण का भी वर्णन कर रहा है, जिसे हम पद 11, 12 और 17 में देखते हैं। इस राज्य में कुछ सिद्धांत सब जातियों और भाषाओं के अशांत मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। हम इस चौथे साम्राज्य के अंतिम चरण में हैं। हम उस समय के अत्यधिक निकट हैं जब रोमी साम्राज्य फिर से संगठित किया जाएगा। वह राज्य आज भी अस्तित्व में है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूरोप के सब राज्य कभी रोमी साम्राज्य के भाग थे। उन्हें संगठित करने वाला कोई हो, हम उस समय के निकट आ चुके हैं, परंतु हमें इसकी कल्पना नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, ये सब राष्ट्र फिर से संगठित किए जाएंगे, चाहे उनके विचार, शासन पद्धति तथा दृष्टिकोण विभिन्न क्यों न हो। इस समय हम अपनी ही आधुनिक सांसारिक परिस्थिति और यहां व्यक्त परिस्थितियों में एक रूपता को देखेंगे। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि हम अंततः समय के अंत में आ रहे हैं। सब महाद्वीप जागृत हो गए हैं और सबको सूर्य के नीचे स्थान चाहिए। जो सदियों से बर्बर थे, वे आज अकस्मात ही जेट युग में आ गए हैं। रेडियो और मिसाइल ने जनसमूह के विचार बदल दिए हैं। उनके मन मस्तिष्क नए नए सिद्धांतों के कारण आकर्षित हैं और हमारा विचलित संसार विश्व युद्ध 3 को रोकने में अत्यधिक व्यस्त है। मेरे मित्रों, मुझे रेडियो और टीवी पर नाना प्रकार के प्रचार देखकर अचंभा होता है। वे परेशान मनुष्यों को बहकाते हैं। मैं भी प्रचार करता हूं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं। काश मेरे सब श्रोताओं का मन मैं जीतकर प्रभु यीशु के लिए ले आता, उनके जीवन में शांति दे पाता, तो यह मेरे लिए आनंद का विषय होता। हम देखते हैं वचन में लिखा हुआ है कि छोटा सा सिंह, यह छोटा सा सिंह मनुष्यों को अपने वश में करेगा। पद 8 में उसे बड़ा बोल बोलने वाला मुंह कहा गया है। वह संसार को जीतेगा, वह शैतान का जन होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 43 पद में प्रभु यीशु ने कहा था कि पिता के नाम में मैं आया हूं तो तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, परंतु जब कोई अपने नाम से आएगा तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। मेरे मित्रों, आज मानववाद मनुष्य की महिमा बढ़ा रहा है। जन अधिकारी, अभिनेता, वे एक दूसरे की बड़ाई भी करते हैं। ये लोग प्रसार माध्यमों को अपने हाथ में रखते हैं। वे सिनेमा को सम्मानित बनाते हैं, जबकि नाटक ही के कारण यूनान का पतन हुआ, उनकी नैतिकता भ्रष्ट हो गई थी। आज भी सिनेमा हमारे नैतिकता को हानि पहुंचा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। मैं युवा वर्ग को स्वतंत्रता की चर्चा करते हुए सुनता हूं, परंतु उनके शब्द और उनके वस्त्र वैसे ही हैं जैसे सबके। वे स्वतंत्र नहीं हैं, मनुष्यों को बहकाया जा रहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन को ही बहकावा समझकर ग्रहण कर लें, तो कहीं अधिक हम अच्छे होंगे। दानियल हमारे सामने जो दृश्य और चित्रण प्रस्तुत करता है, वह वास्तव में भयानक और परेशान करने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि भविष्यवाणी की पूर्ति हो रही है, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि हवा चलने लगी है, यह आंधी लंबी चलेगी। हम दानियल की पुस्तक सात अध्याय उसके तीन पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। मेरे प्रियो, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये चारों पशु अलग अलग प्रकृति के हैं। शेर, भालू, चीता और दस सींगों वाला पशु जो अन्य किसी स्थान में कभी देखा नहीं गया। ये पशु अनेक मनुष्यों, जातियों, भाषाओं, गोत्रों और राष्ट्रों का संगठन है और ये भिन्न भिन्न रीति से उन कार्यों को प्रकट करते हैं जिसे परमेश्वर हमें सिखाना और बताना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि दानियल द्वारा दर्शनों का वर्णन भी है और परमेश्वर मुझे और आपको इस अंतकाल के समय अपने दास दानियल के द्वारा से, उन वचनों के द्वारा से आगाह कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं, उसके निकटता में आ जाएं, ताकि उस भयानक दिन से हम बचने पाएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले अध्ययन में आप अवश्य ही हमारे साथ होंगे ताकि इन पशुओं के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं, ये जो चार साम्राज्य हैं, जो अलग अलग पशु और अलग अलग मूर्ति के अंगों के द्वारा से हम देख रहे हैं, इसको हम सीख कर जान सकें कि परमेश्वर इस पुस्तक के माध्यम से हम सबको क्या बताना चाहता है। यदि आप इस अध्ययन को सुन रहे हैं तो कृपया अगले अध्ययन के लिए भी आप अवश्य तैयार रहें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें कि आप दानियल की पुस्तक को, उसकी बातों को समझने पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है।